अब हज के अहराम में दाखिल हो गई। अब सुबह आठवीं जिलहिज्जा को सुन्नत तरीका यही है कि सूरज के तुलू होने के बाद मीना के लिए रवाना हुआ जाए। यहां एक बात यह अर्ज कर दूं कि मीना जाएंगे, मीना से अराफात, अराफात से मुजदलिफा, मुजदलिफा से फिर मीना, और मीना आने के बाद कंकरी मारनी है, कुर्बानी करनी है, हलक या कसर करवाना है, और तवाफे जियारत करना है, और तवाफे जियारत के बाद सही करनी है। जो शख्स तमत्तु कर रहा है उसके लिए अफजल यही है कि सई तवाफे जियारत के बाद करे। और जो शख्स हज इफराद या हज किरान कर रहा है उसके लिए अफजल यह है कि सई हज से पहले कर ले। लेकिन अगर किरान करने वाला और इफराद करने वाला अपनी सई को तवाफे जियारत के बाद करना चाहता है तो उसमें हरज कोई नहीं है। तो इसी तरह अगर तमत्तु करने वाले के दिल में यह ख्याल आए कि मैं तवाफे जियारत के बाद वाली सई मीना जाने से पहले ही कर लूं, तो उसके लिए भी गुंजाइश है। गो बेहतर यही है कि तवाफे जियारत के बाद करे। अब एहराम में दाखिल हो जाने के बाद उसके दिल में अगर यह दाइया पैदा होता है, यह ख्याल आता है और अपने लिए सहूलत इसमें देखता है कि मैं सई से इसी वक्त फारिग हो जाऊं ताकि बाद में फकत तवाफी जियारत करना पड़े, तो उसके लिए गुंजाइश है कि इस वक्त वो सही कर सकता है। लेकिन कायदा यह है कि सई बगैर तवाफ के नहीं हो सकती, इसलिए उसे एक नफल तवाफ करना पड़ेगा। तो एहराम में आ जाने के बाद नफल तवाफ करें और उस नफल तवाफ के बाद दो रकात नमाज पढ़ें और दो रकात नमाज पढ़ने के बाद सही करें। और यह कायदा याद रहे कि हर वो तवाफ जिसके बाद सही है उसमें अगर तवाफ करने वाला हालत एहराम में है तो इस्तिबा भी करना है सातों चक्करों में, और पहले तीन चक्करों में रमल भी करनी है। तो इस नफल तवाफ में जो सई करने के लिए अदा कर रहा है सात चक्करों में इस्तिबा भी करेगा और पहले तीन चक्करों में रमल भी करेगा, और उसके बाद दो रकात नमाज अदा करके सई से फारिग हो जाए। अब ये हज से फरागत के बाद मीना से जब तवाफ जियारत करने के लिए आएगा तो इसे सई करने की जरूरत बाकी नहीं रहेगी। दूसरी बात, सुन्नत यही है कि मीना के लिए रवानगी सूरज निकलने के बाद हो आठवीं जिलहिज्जा को, फर्स्ट डे ऑफ हज को। अगर कोई शख्स सूरज निकलने से पहले चला गया, सुबह सादिक से पहले चला गया, रात ही को चला गया, तो ये खिलाफ अवला है, अफजल के खिलाफ है, सवाब में कमी हो जाएगी। लेकिन ऐसा करने में कोई हरज और मुजायका नहीं है। अगर मुअल्लिम के इंतजाम की वजह से आपको मजबूर होकर जाना पड़े। तीसरी बात, इस मौके पर यह सवाल उठता है कि जब तक हम मक्का मुकर्रमा में थे उस वक्त चूंकि पांचों नमाजों का एहतिमाम हरम शरीफ में होता था और चाहे कोई शख्स मुसाफिर हो या मुकीम हो, जब वो मुकीम इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है तो उसे पूरी ही नमाज पढ़नी पड़ती है, और हरम शरीफ के इमाम साहब चूंकि मुकीम थे इसलिए उनके पीछे सारी नमाजें फुल पढ़ते थे, तो उस वक्त यह सवाल नहीं उठता कि हमें कसर करनी है या पूरी पढ़नी है। लेकिन जैसे ही मीना पहुंच जाते हैं तो जोहर की नमाज में यह मसला उठता है कि हमें कसर करनी है या पूरी पढ़नी है। तो इसके लिए एक ज़ाबता ज़हन में रख लीजिए, एक कायदा कि आप जब भी किसी नई जगह पर सफर करके जाएं जो 48 मील से ज्यादा हो, जैसे यहां से आप जैसे ही निकलेंगे तो चूंकि सफर 48 मील से ज्यादा का है तो बस्ती से निकलते ही आप मुसाफिर हो जाएंगे, अब आप कसर करेंगे, इल्ला ये कि किसी मुकीम इमाम के पीछे नमाज पढ़े। अब मक्का मुकर्रमा पहुंच गए तो मक्का मुकर्रमा पहुंचने के बाद यह देखना है कि मक्का मुकर्रमा पहुंचने के बाद कंटिन्यूअसली आपने कितने दिन वहां ठहरने का इरादा किया। अगर 15 दिन से कम हो तो आप मुसाफिर हैं, अगर 15 दिन या 15 दिन से ज्यादा हो तो आप मुकीम हैं। मसलन एक हाजी मक्का मुकर्रमा पहुंचा और उसने ये नियत की कि 16 दिन तक मैं मक्का मुकर्रमा हूं, उसके बाद में मदीना मुनव्वरा जाऊंगा, तो अब ये 16 दिन तक ठहरने का इरादा कर लिया तो ये मुकीम हो गया। अब अगर उसकी मस्जिद हराम में नमाज फौत हो जाए इमाम के साथ और खुद पढ़नी पड़े तो ये कसर नहीं करेगा बल्कि पूरी पढ़ेगा। और अगर मक्का मुकर्रमा पहुंचने पर उसने नियत ये की कि मैं 14 दिन मक्का मुकर्रमा में ठहरूंगा और फिर मदीना मुनव्वरा जाऊंगा तो ये मुसाफिर है। इसी तरह मदीना मुनव्वरा चला गया। अब मदीना मुनव्वरा जाने के बाद यह देखना है कि मदीना मुनव्वरा पहुंचने के बाद कंटिन्यूअसली वहां कितने दिन ठहरने की नियत की है। अगर 15 डेज या उससे ज्यादा है तो मुकीम पूरी नमाजें पढ़ेगा, और अगर 15 डेज से कम हो तो इमाम साहब के साथ तो पूरी पढ़ेगा, अकेला होगा तो कसर पढ़ेगा। और एक शख्स मक्का मुकर्रमा में पहुंचा और मक्का मुकर्रमा पहुंचने के बाद मदीना नहीं जा रहा है बल्कि डायरेक्ट मीना जा रहा है, मदीना मुनव्वरा से आया अब मीना जाने वाला है, या यहां से मक्का मुकर्रमा गया और सीधा मीना ही जाने वाला है, तो जिस दिन वो मीना जा रहा है उस वक्त वो ये देख ले कि मक्का मुकर्रमा जब ये आया था उस वक्त से लेकर मीना जाने का इरादा था, तो मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने से लेकर मीना जाने तक कितने दिन का इरादा था। अगर 15 डेज या 15 डेज से ज्यादा का कियाम मक्का मुकर्रमा में हो चुका है तो यह मुकीम है, और अगर 15 डेज से कम है तो यह मुसाफिर है। अब मक्का मुकर्रमा में पहुंचने के बाद 8वीं जिलहिज्जा को मीना जाने तक उसने 15 दिन की नियत की थी कि मेरे 15 डेज या उससे ज्यादा हो जाएंगे तो अब ये मुकीम है। अब ये मीना में भी पूरी नमाज पढ़ेगा, अरफात में भी पूरी पढ़ेगा, मुजदलिफा में भी पूरी पढ़ेगा, फिर मीना में पूरी पढ़ेगा। और अगर 15 डेज नहीं हुए तो मीना में भी कसर करेगा, अरफा में भी कसर करेगा, मुजदलिफा में कसर करेगा, फिर मीना में भी कसर करेगा। हां अगर किसी ऐसे शख्स के पीछे नमाज पढ़ रहा है जो मुकीम है तो पूरी पढ़ेगा। एक बात यह हुई। दूसरी बात यह जहन में रखने की है कि एक है हज की कुर्बानी जिसे दमे शुक्र कहते हैं, और दूसरी है माल की कुर्बानी जो हर साल बकरा ईद के मौके पर उस मुसलमान पर वाजिब होती है जो साहेब निसाब हो, और अल्लाह ताला की तौफीक से मुसलमान करते हैं कुर्बानी। एक शख्स साहेब निसाब है लेकिन मुसाफिर है तो उसके ऊपर वो माली कुर्बानी नहीं होगी, और एक शख्स साहेब निसाब है और मुकीम है उसके ऊपर वो माली कुर्बानी भी होगी। अब हम हज्जे तमत्तु करें या हज्जे किरान करें तो हम पर हज की कुर्बानी तो वाजिब है ही, और मीना रवाना होने से पहले मक्का मुकर्रमा में 15 दिन हो चुके हैं और 15 दिन के कयाम की नियत कर ली थी तो वहां हम मुकीम हो गए, और मुकीम होने के साथ साथ अल्लाह ने इतना दिया हुआ भी है कि उस पर ज़कात फर्ज हो रही है, तो इस शख्स को दो कुर्बानी अदा करनी पड़ेगी, एक माली कुर्बानी और दूसरी हज की कुर्बानी दमे शुक्र। दमे शुक्र जो है हज की कुर्बानी, उसके लिए जरूरी है कि हरम ही के इहाते में कुर्बानी करे, मीना में जरूरी है, मीना या हरम का कोई भी इहाता। और वो माली कुर्बानी है जो बकरा ईद के मौके पर साहेब इस्तेताअत पर वाजिब होती है, उसके बारे में हाजी जाने से पहले यहां भी इंतजाम करके जा सकता है और किसी जगह इंतजाम कर ले।